समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
प्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बृहस्पतिवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में यह है समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और रेणु कटारिया, हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार रवि, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड एज रवि हैज ऑलरेडी अपडेटेड यू डियर लिसनर्स दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल बी ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे दैट इज द 11th ऑफ अप्रैल। सो रवि, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस।
बिल्कुल रेनू, लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज मीठी मीठी ईद है। ईद उल फितर मुस्लिम समुदाय का एक पवित्र त्यौहार है। ये रमजान के 30 दिन के बाद चांद देखकर दूसरे दिन मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है। रमजान के पूरे महीने में मुस्लिम भाई बहन रोजे रखकर, यानी कि भूखे प्यासे रहकर पूरा महीना अल्लाह की इबादत में गुजार देते हैं। इस पूरे महीने को अल्लाह की इबादत में गुजार कर जब वे रोजों से फारिग हो जाते हैं तो चांद की पहली तारीख, यानी कि जिस दिन चांद दिखाई देता है, उस रोज को छोड़कर दूसरे दिन ईद का त्यौहार यानी कि बहुत खुशी का दिन मनाया जाता है। तो इसी खुशी के दिन को ईद उल फितर कहते हैं।
And yes, we are wishing all our listeners a joyous Eid ul-Fitr filled with peace, love and prosperity. May this special day bring you happiness and blessings. Eid Mubarak.
Ji, bilkul Eid Mubarak. तो आइए इसी प्रारंभिक जानकारी के साथ शुरू करते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का।
जी, थैंक यू रवि। ईद उल फित्र विच मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान इज बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे। द फेथफुल्स विल ऑफर ईद प्रेयर्स इन ईदगाहस एंड मॉस्क्स। In Delhi, main Eid congregations will be held at Jama Masjid, Fatehpuri Masjid and Shahi Eidgah. President, Vice President and Prime Minister have greeted the people on the occasion. In her message, President Draupadi Murmu said, the festival marks the culmination of the period of fasting and prayer during the holy month of Ramzan and gives the message of love and brotherhood. She said, this festival promotes unity, forgiveness and charity. In his message, Prime Minister Narendra Modi prayed that this occasion may further spread the spirit of compassion, togetherness and peace.
नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के करौली में भी चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। रैली को विजय शंखनाद सभा का नाम दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आज राजस्थान में बीकानेर के अनूपगढ़ और जोधपुर के फलौदी में जनसभाएं करेंगे। दोनों दलों के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में देहरादून के ऋषिकेश में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली का उद्देश्य गढ़वाल मंडल के 3 संसदीय क्षेत्रों टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी की जनता से भाजपा के लिए समर्थन जुटाना है। 19 अप्रैल को राज्य की सभी 5 सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में श्री मोदी की यह रैली क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लागत से विश्व स्तरीय सामान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अमरीका की एक पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भारत उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो विश्वसनीय और लचीली अर्थव्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने भारत को 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखा है और वे अब देश को जल्द ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और अन्य भविष्य की प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन अभियान चलाया है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकारी योजनाएं और पहल किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम किया है।
The notification for the third phase of Lok Sabha election will be issued tomorrow. Elections will be held in 94 Lok Sabha seats in 10 states and 2 union territories in this phase. All 26 seats of Gujarat, 14 seats of Karnataka, 11 seats of Maharashtra, 10 seats of Uttar Pradesh, 8 seats of Madhya Pradesh, 7 seats of Chhattisgarh, 5 seats of Bihar, 4 seats each in Assam and West Bengal, 2 seats each in Goa and Dadan and Nagar Haveli and Daman and Diu, and 1 seat in Jammu and Kashmir will go to polls in this third phase. Nominations can be filled till 19th of this month. Voting for this phase will be held on 7th May. Congress has released a list of 2 candidates for the ensuing Lok Sabha elections. Dr. Kalyan Kale will contest from Jalna and Dr. Shobhna Dinesh Bachcha from Dhule, Maharashtra.
कोलकाता उच्च न्यायालय ने कल संदेश खाले घटना पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सभी पक्षों को शिकायतें 15 दिन के अंदर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। संदेश खाले की महिलाओं पर अत्याचार, जमीन पर कब्जा करना और मछली पालन के लिए जमीन को जबरन अवैध तालाबों में बदलना, आम लोगों को धोखा देना जैसे विभिन्न आरोपों पर सीबीआई जांच शुरू करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। न्यायालय ने संदेश खाली के संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आदेश दिया है।
एंड मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स, इन टेबल टेनिस इंडियाज यशस्विनी घोरपाड़े हैज एडवांस्ड टू द सेकंड राउंड ऑफ द डब्ल्यूटीटी फीडर डुसेलडॉर्फ टूर्नामेंट इन जर्मनी येस्टरडे। शी डिफीटेड जी यूनाचियर साउथ कोरिया 3-2 इन द वुमेन्स सिंगल्स राउंड ऑफ 64। शी विल नाउ फेस किम हायोंग, अनदर साउथ कोरियन प्लेयर, इन द नेक्स्ट राउंड।
आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। 197 रन का लक्ष्य गुजरात ने अंतिम गेंद पर प्लेयर ऑफ द मैच राशिद खान चौके की मदद से हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने 72 रन बनाए। मुंबई में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं वेणु कटारिया।
थैंक यू रवि। लेट्स बिगिन विद चेन्नई। आईआईटी मद्रास नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग विल ऑफर इट्स प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स यूजिंग पाइथन कोर्स इन तमिल। एज ऑफ नाउ 174 कोर्सेज आर अवेलेबल इन तमिल। Video lectures will have Tamil subtitles, transcripts, books with slides and audio tracks among others. For many first year engineering students, they have to make a transition from their mother tongue to English if they did their schooling in a regional language. While the technical terms will be in English, the explanations and concepts will be in Tamil. However, the exams will be conducted in English. The All India, now this is moving on to Bengaluru, Ravi. The All India Council for Technical Education, AICTE, has signed an MOU with the Centre for Cellular and Molecular Platforms, CCAMP, for an inter-institutional biomedical innovations program. This will establish synergy between the medical and engineering institutions to catalyse interdisciplinary education, research and innovation. The MOU was signed in Bengaluru yesterday to facilitate engineering and medical graduates, postgraduates and faculty members to jointly work on the challenges from the medical domain. It will also help nurture entrepreneurs in the healthcare sector. AICTE will select the institutions and CCAMP will help forge into inter-speciality teamwork and nurture entrepreneurs. Moving on to Hyderabad, after the last month-long fasting and abstinence during the holy months of Ramzan, Eid ul-Fitr is being celebrated in Hyderabad and other parts of Telangana state today. As soon as the first siren was sounded from atop masjids, Muslims broke their fast on the iftar dastar and proceeded for Maghrib prayers last evening. The second siren went off signaling that it was Chand Raat or Eid Eve. Chand Mubarak greetings were exchanged among them. Meanwhile, all arrangements have been made for the smooth conduct of the annual Eid ul-Fitr Namaz at Eidgahs across the state. The main congregation will be held at Mir Alam at Bahadurpura in Hyderabad at 10 a.m. later this morning. Thousands of people are expected to turn up for the prayers. The water board in Hyderabad has made arrangements to keep adequate drinking water at Eidgahs. The Hyderabad police deployed about 1,000 personnel to maintain security during the Eid prayers. Bomb detection teams deployed for conducting search and routine checks. The state-owned road transport corporation will be arranging special buses to Eidgah Mir Alam from different areas of the city. And another news from Hyderabad. In Telangana, the Hyderabad Cyber Crime Police has organized an awareness campaign on various types of cyber frauds at a few residential colonies in the capital city. Yesterday, the campaign has been held in the areas including Ambapet and surrounding colonies. Awareness was sought to be created on investment frauds, stock trading fraud, OTP, that is one-time password fraud, and social media fraud, among others. That is all that I have from these three metros, Ravi. Moving on to you, let's have some news from Delhi, Mumbai and Kolkata.
Ji, bilkul, Renu. तो शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली से ही. दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर का चुनाव 26 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. चुनाव के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन 18 अप्रैल तक दाखिल कर सकेंगे. चुनाव का आयोजन दिल्ली नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में किया जाएगा. निगम सचिव कार्यालय ने बताया है कि प्रत्याशी किसी भी कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. दिल्ली नगर निगम के महापौर का पद इस वर्ष के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. दिल्ली सरकार ने आज ईद के मौके पर राजधानी में ड्राई डे घोषित किया है. सरकार के आदेश के अनुसार आज राजधानी में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा 17 अप्रैल को रामनवमी और 21 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर भी दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. उत्तर रेलवे ने बताया है कि सर्वर अपडेट के कार्य के कारण 12 और 13 अप्रैल को रात 11:45 से अगले दिन तड़के 4:15 तक दिल्ली स्थित यात्री आरक्षण सिस्टम पीआरएस की सेवाएं अस्थायी रूप से ठप रहेंगी. इस दौरान यात्री आरक्षण, निरस्त्रीकरण, पूछताछ सेवा और इंटरनेट बुकिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. बढ़ते हैं मुंबई की ओर चलते हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के सभी 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान करने वाले मतदाताओं की उंगलियों पर लगाने के लिए 20,267 बोतल स्याही की मांग दर्ज की गई है. इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया 26 अप्रैल 2024 से शुरू होगी और मतदान 20 मई 2024 को होगा. मुंबई उपनगरों में कुल 72,28,403 मतदाता हैं जबकि मतदान केंद्रों की संख्या 7,353 है. बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी के प्रमुख भूषण गगरानी ने सभी एजेंसियों को प्री मॉनसून कार्य में उचित भूमिका निभाने का निर्देश दिया है. इसके लिए बीएमसी प्रमुख ने सभी विभागों के बीच समन्वय के लिए एक समीक्षा बैठक की. मुंबई में शहर और उपनगरों दोनों में 481 स्थानों पर जल निकासी पंप स्थापित किए जाएंगे. श्री गगरानी ने विभाग स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए रखने, संभावित भूस्खलन स्थलों पर उपाय करने का आदेश दिया. श्री गगरानी ने कहा कि कूड़ा उठवाया जाए तथा सड़क यातायात सुचारू किया जाए. श्री गगरानी ने यह भी बताया कि एनडीआरएफ, भारतीय नौसेना और फायर ब्रिगेड को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है. मुंबई में जिला निर्वाचन कार्यालय डीईओ ने मतदाता जागरूकता अभियानों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कुर्ला में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. डीईओ कार्यालय ने बोरीवली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कर्तव्यों के लिए नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इस प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम मशीन का निरीक्षण, कार्यप्रणाली एवं मशीन के कनेक्शन का प्रस्तुतीकरण एवं प्रदर्शन किया गया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोलकाता की ओर। पूरे पश्चिम बंगाल में ईद धार्मिक उत्साह और रंगों के साथ मनाई जा रही है। कोलकाता के रेड रोड पर विशेष प्रार्थना की जा रही है, उसी के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। शहर के सभी प्रमुख इलाकों, मेट्रो, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों, बाजारों पर कड़ी सुरक्षा निगरानी चल रही है। पूरे कोलकाता में मस्जिदों को रोशनी से सजाया गया है, लोग उत्सव के मूड में हैं। तो रेणु, ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार।
जी।
आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और रेणु के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की, तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। दिल्ली में आंशिक रूप से आज बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है।
एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मेनली क्लियर स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। एंड हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई, बिकमिंग जनरली क्लाउडी टुवर्ड्स आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट। The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को, जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
Yes, on this day, that is 11th of April in 1913, Iron Ropes Bridge known as Lakshman Jhula was constructed over Ganga at Rishikesh. In 1930, Pandit Motilal Nehru renamed Anand Bhavan as Swaraj Bhavan and handed it over to the people. On this day, 11th of April in 1942, All India Congress Party rejected the British offer of domination status at New Delhi. In 1984, Soyuz T-11 returned to Earth, which carried three cosmonauts, including the first Indian squadron leader Rakesh Sharma, to Salyut 7. And on this day in 1992, Marathi Cinema's Bhai Chandra Govind Pendekar gets the Phalke Award.
1999 में आज के दिन फिलीपींस की सरकार द्वारा एक स्कूल गोद लो की अनोखी घोषणा की गई।
एंड ऑन दिस डे इन द ईयर 2000, मिस झुम्पा लहरी, एन ऑथर ऑफ इंडियन ओरिजिन, विंस द पुलित्ज़र प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हर डेब्यू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज।
और 2002 में आज के दिन चीन में फुटबॉल मैच फिक्सिंग के आरोप में रेफरी को गिरफ्तार किया गया। 2004 में आज के दिन इस्लामाबाद में भारत के प्रख्यात गायक कलाकार सोनू निगम के कार्यक्रम स्थल के पास एक कार में बम विस्फोट हुआ। और 2008 में आज के दिन स्वीडन में वैज्ञानिकों ने 8000 वर्ष पुराने वृक्ष की खोज की। और अब समय हो गया है रेणु अपने श्रोताओं को कुछ प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में जानकारी देने का।
जी बिल्कुल,
तो शुरुआत हम पुण्यतिथियों से करेंगे।
जी,
इसमें सबसे पहला नाम है सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु का, जिनका जन्म तो हुआ था 4 मार्च 1921 को, लेकिन इन्होंने इस दुनिया से विदा ली आज ही के दिन यानी कि 11 अप्रैल 1977 में। हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिला के आरोही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु के पिता शिलानाथ मंडल संपन्न व्यक्ति थे, भारत के स्वाधीनता संघर्ष में उन्होंने भाग लिया था, यानी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से योगदान दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई और सत्ता के दमन और शोषण के विरूद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। रेणु का बचपन आजादी की लड़ाई को देखते समझते बीता। रेणु ने स्वयं लिखा है कि पिताजी किसान थे और इलाके के स्वराज आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता भी थे। खादी पहनते थे, घर में चरखा चलता था। स्वाधीनता संघर्ष की चेतना रेणु में उनके पारिवारिक वातावरण से आई थी। रेणु भी बचपन और किशोरावस्था में ही देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। 1930-31 में जब रेणु अररिया हाईस्कूल के चौथे दर्जे में पढ़ते थे, तभी महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद अररिया में हड़ताल हुई। स्कूल के सारे छात्र भी हड़ताल पर रहे और रेणु ने अपने स्कूल के असिस्टेंट हेडमास्टर को स्कूल में जाने से रोका। रेणु को इसकी सजा मिली, लेकिन इसके साथ ही वे इलाके के बहादुर सुराजी के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए। और फणीश्वर नाथ रेणु की मुख्य रचनाओं में शामिल हैं 1954 की मैला आंचल, 1957 की परती परिकथा, 1965 की जुलूस और 1966 की कितने चौराहे आदि। अगला नाम जो पुण्यतिथियों में है वो है विष्णु प्रभाकर का। अपने साहित्य में भारतीय वाग्मिता और अस्मिता को व्यंजित करने के लिए वे हमेशा ही प्रसिद्ध रहे। उनका जन्म हुआ था 21 जून 1912 को, लेकिन इस संसार से विष्णु प्रभाकर जी ने विदा ली 11 अप्रैल 2009 को। विष्णु प्रभाकर जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृतांत और कविता आदि प्रमुख विधाओं में अपनी बहुमूल्य रचनाएं की हैं। प्रभाकर जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओं तथा प्रकाशन संबंधी मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। देश विदेश की अनेक यात्राएं करने वाले विष्णु जी जीवन पर्यंत यानी कि अपने पूरे जीवन में पूर्णकालिक मत्स्यजीवी रचनाकार के रूप में साहित्य साधना में लीन रहे थे। विष्णु प्रभाकर जी के मुख्य रचनाओं में शामिल हैं अर्ध नारीश्वर, आवारा, मसीहा, क्षमादान तथा पंखहीन, आत्मकथा आदि। पुरस्कारों में पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पाब्लो नेरुदा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मूर्ति दिवस पुरस्कार और शलाका सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था।
मूविंग ऑन टू बर्थडेज, टुडे इज द बर्थडे ऑफ रोहिणी हट्टंगडी, हु वॉज बोर्न इन 1955 ऑन दिस डे, हु इज एन इंडियन एक्ट्रेस नोन फॉर हर वर्क इन मराठी, हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नडा, मलयालम एंड गुजराती फिल्म्स एंड मराठी सोप ऑपेराज एंड थिएटर। शी हैज वन टू फिल्म फेयर अवार्ड, वन नेशनल फिल्म अवार्ड एंड इज द ओनली इंडियन एक्ट्रेस टू विन द बाफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल फॉर हर परफॉर्मेंस एज कस्तूरबा गांधी इन गांधी विच वॉज मेड इन 1982।
उन्होंने ये भूमिका अदा की थी।
जी बिल्कुल, शी इज एन एलुमना ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऑफ न्यू दिल्ली एंड अटंगरी हैज वर्क मेनली इन थिएटर व्हेन शी मेड हर मूवी डेब्यू विद अरविंद देसाई की अजीब दास्ता इन 1978। सम ऑफ हर नोटेड सिनेमेटिक रोल्स वर इन सच आर्ट फिल्म्स एज अर्थ इन 1982, पार्टी एंड सारांश इन 1984। अटंगरी वॉज मोस्टली ऑफर्ड कैरेक्टर रोल्स इन मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा आफ्टर हर पोर्ट्रेयल इन गांधी, often typecast in mother roles much ahead of her years. Respected for her acting prowess, she has appeared in over 80 feature films and is active in theatre and television.
बिल्कुल ठीक कहा आपने रेणु। और रोहिणी हट्टंगडी हमेशा से ही लीग से हटकर अभिनेत्री रही हैं और उन्होंने अब तक जो भी भूमिकाएं की हैं, सच कहूं तो वो बहुत ही कठिन भूमिकाएं थी।
वेरी ट्रू।
रोहिणी हट्टंगडी ने गांधी फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका की थी। तो आज कस्तूरबा गांधी जी जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी, उनकी आज जो है जन्म जयंती है। महात्मा गांधी की पत्नी जो भारत में बा के नाम से विख्यात हैं, उनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1869 को और संसार से उन्होंने विदा ली 22 फरवरी 1944 को। भारत के गौरवशाली इतिहास में बलिदान की इतनी गाथाएं हैं रेणु की, सितारों की गिनती कम पड़ जाती है। अगर हम अपने इतिहास की विवेचना करने बैठें तो महिलाओं के बढ़ चढ़कर योगदान देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो संस्कृति हो, परंपरा हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, युद्ध, शांति या कुछ और, कोई भी विद्या नारी स्पर्श से अछूती नहीं रही है। अगर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की ही बात करें तो अनगिनत महिलाओं का नाम प्रतिबिंबित होता है जो बहुत ही सक्रिय रहीं। सबसे पहली महिला जिनका नाम ही स्वतंत्रता का पर्याय बन गया वो हैं श्रीमती कस्तूरबा गांधी, तो उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं।
जी बिल्कुल।
और जन्म जयंतियों में अगला नाम है कुंदन लाल सहगल या कह लीजिए केएल सहगल साहब का। हिंदी फिल्मों में वैसे तो एक बेमिसाल गायक के रूप में वे विख्यात हैं, लेकिन देवदास 1936 में जो आई थी जैसी चंद फिल्मों में अभिनय के कारण उनके प्रशंसक उन्हें एक उम्दा अभिनेता भी करार देते हैं। केएल सहगल साहब का जो जन्म है वो 11 अप्रैल 1904 को हुआ था और इन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली 18 जनवरी 1947 को। कुंदल लाल सहगर हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जा सकते हैं। 1930 और 1940 के दशक की संगीतमयी फिल्मों की ओर दर्शक उनके भाव प्रवण अभिनय और दिलकश गायकी के कारण खींचे चले आते थे। सहगल साहब की आवाज की लोकप्रियता का आलम यह था रेनू कि कभी भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा रेडियो सिलोन कई साल तक हर सुबह ठीक 7:57 पर इस गायक का गीत बजाता था। भारत रत्न सम्मानित लता मंगेशकर सहगल साहब की बहुत बड़ी भक्त थी और वे चाहती थी कि सहगल साहब की कोई निशानी उनके पास हो, तो सहगल साहब की बेटी ने रत्न जड़ित अंगूठी लता जी को दी थी जो लता जी के पास उनके अंतिम समय तक रही। के एल सहगल साहब की मुख्य फिल्मों में शामिल हैं 1933 की देवदास पूरन भगत, 1942 की सूरदास और 1943 की तानसेन। तो फिलहाल सुन लेते हैं के एल सहगल साहब की मधुर आवाज में उनके गीतों की एक मधुर मेडली।
जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, तू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें, नैनों में रहे तो सुध बुध खोए, छिपे तो जैन हरे तू नैना प्यारा रहे कोनो बाज समय
And today we are also remembering Gop, who was born in 1913 on this day, who was an Indian actor of Hindi cinema, starting his career with a small role in Insaan Ya Shaitaan, directed by Moti Gidbani and produced by Eastern Arts Production. Gop went on to act in over 140 films in a career spanning 24 years, from 1933 to 1957. His acting in comic roles won him critical and popular acclaim, and he soon became the leading comedian of his time. So here we are making our listeners listen to the famous song Mere Piya Gaye Rangoon from the movie Patanga, sung by C. Ramchandra for Gop and by Shamshad Begum for Nigar Sultana.
Hello, Hindustan ka tera tu? Hello. रेणु का देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ
मेरे पिया वो मेरे पिया दे रंगू पिया है वहाँ से टैली फूल तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है।
And today is also the birthday of Amita, who is an Indian actress. She appeared in Hindi language films such as Tumsa Nahi Dekha, Mere Mehboob and Goonj Uthi Shehnai. And here let's listen into this beautiful song, Yun Toh Humne Laakh Hasi Dekhe Hain, sung by Shami Kapoor in this movie.
उफ ये नजर उफ ये अदा उफ ये नजर उफ ये अदा कौन न अब होगा फिदा, जुल्फ है या बदलिया आंखें है या बिजलिया, जाने किस किस की आएगी सजा यूं तो।
कार्यक्रम के अंत में बात भारतीय फिल्म अभिनेता और चरित्र अभिनेता नवीन निश्चल के बारे में, जिनका जन्म हुआ 11 अप्रैल 1946 को और जिन्होंने इस दुनिया से विदा ली 19 मार्च 2011 मुंबई में। नवीन निश्चल जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1970 में फिल्म सावन भादो से की, इसके अलावा उन्होंने फिल्म विक्टोरिया नंबर 203, धुंध, परवाना, भुड्डा मिल गया जैसी अनेक यादगार फिल्मों में काम किया।
रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे।
चलते चलते आज का विचार कि जो जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और रेणु कटारिया को आज से मेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.